லொக்கேஷன் முனாரி பியூஜி லெக்சர் ஒன் கவுன்சிலிங் கிளாஸ் ரெக்கார்டட் ஆன் 29 ஜூலை 2014 இன் ரோஹிணி டெம்பிள்.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜானஞ்சனஶலாகயா சக்ஷுரோன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஃ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமிஹ கதாதி ஸ்வபதாந்திதம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத்கமலம் ஸ்ரீகுரும் வைஷ்ணவாம்சம் ஸ்ரீரூபம் சாகுஜாதம் சர்வநரகுநாதாந்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதாகிருஷ்ணபாதாம் சகணலலிதா ஸ்ரீவிஷாகாம்பிதம். ஹே கிருஷ்ணகருணாசிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷ்பானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரே. வாஞ்சா கல்பதருயேஷ கிருபா சிந்துப்யஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசத்தாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தோ பிச்சி பார் ஹமோனே எக் விஷேஷ குண் பர டிஸ்கஸ் கியா தா டிவோட்டீஸ் கேலே ஆர் உஸ்கி வஜா சே ஹமாரே பக்திமய ஜீவன் மே ஜோ ஹை க்யா ஃபாயதா ஹோதா ஹை ஆர் கிஸ் பிரகார் ஹம்லோக இஸ் சம்சார் மே பி ஆசானி சே ஜீ சக்தே ஹை அர்த்தாத் कि बहुत आसानी से बिना किसी जिसे बोलते टेंशन के जी सकते हैं. तो क्या थी क्वालिटी वो? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन. कि कितना जरूरी है एक भक्त को अपने वर्तमान परिस्थितियों में संतुष्ट रहना. संतुष्टि के विषय में सोचते ही जो व्यक्ति संतुष्ट होता है इसका मतलब वो भगवान के द्वारा जो है भेजी जाने वाली सभी परिस्थितियों का क्या करता है? स्वागत करता है. तभी तो वो सेटिस्फाइड रहता है. और अगर कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो भौतिक जगत में तो हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी परेशान तो रहता ही है. लेकिन भक्तों के समाज में आकर भी कोई व्यक्ति को संतुष्ट नहीं है तो उसका जीवन जो है यहाँ पर भी चिंताओं से घिरा रहता है. और संतुष्ट ना होना अपने आप में हमें पता लगाया कि क्या कारण है संतुष्ट ना होने का. क्या कारण बताए थे आप लोगों ने? डिस्कस भी किए थे कई सारी चीज़ें थी कि एक तो उसकी भौतिक इच्छाएं होना, फलाशक्ति और इस प्रकार के चीज़ों से और ज्ञान ना होना, इन सब चीज़ों की वजह से वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाता. और उसका कारण ये होता है कि वो हर समय जिस प्रकार लोभ में भौतिक जगत में जीने नहीं देता, उसी प्रकार असंतुष्ट व्यक्ति सदैव परेशान रहता है। तो ये एक ऐसा गुण है जो भक्तों को चाहिए कि अपने जीवन में उतारें, और इसका फायदा कब होगा, जब हम लोग ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे जो कि शास्त्रों में दिया गया है, और भगवान के द्वारा भेजी जाने वाली हर परिस्थिति का स्वागत करें, तो व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। दूसरा, संतुष्टि के अलावा एक और ऐसा क्वालिटी है जो मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं अमानित्वम, अर्थात कि किसी भी प्रकार की मान की इच्छा ना करना। और अगर इसको भी हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें डिटेल में जाने का, तो मान की इच्छा जीव में क्यों आती है, कैसे आती है, तो इस पर अगर सोचने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि जब आध्यात्मिक जगत में, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवात्मा भगवान से विद्रोह कर कर आया, विद्रोह क्यों किया, क्योंकि देखा जाता है भोगने की इच्छा, या जिस प्रकार भगवान को पूरे आध्यात्मिक जगत में केवल भगवान को ही मान मिल रहा है, उन्हीं की इच्छाएं पूरी हो रही है, उन्हीं को सर्वसर्व माना जा रहा है, उन्हीं की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य हो रहा है, तो जीवात्मा के हृदय में जब भगवान की तरफ भोगने की इच्छा आई तो उसको इस भौतिक जगत में भेजा गया। निकटस्थ माया झापटिया धर। तो ये जो भोग की मेंटालिटी है, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, आई एम द एंजॉयर, किसका, यज्ञ और तपस्याओं का। जितनी भी हम चीजें करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, देवता लोग भी यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में कुछ भाग उनका भी होता है प्रसाद के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, सभी तपस्याओं का, हम जो तपस्या करते उन तपस्याओं का फल होता है कुछ ना कुछ, कि हम चाहते हैं इससे ये हो जाए और उससे वो हो जाए, है ना। तो भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली मैं ही हूं इन सब चीजों का भोक्ता भी। सर्वलोक महेश्वर, फिर भगवान अपनी प्रोप्राइटरशिप भी घोषित कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो संसार है इन सारे लोगों का ईश्वर भी, स्वामी भी मैं ही हूं। तो हम लोग लड़ाई झगड़ों में भाई भाई से या लोगों से झगड़ा, एक समाज का दूसरे समाज से, एक देश का दूसरे देश से, किस चीज को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, जबकि भागवत में 12वें स्कंद में पृथ्वी देवी खूब हंस रही हैं उन राजाओं पर जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और ये कह रहे हैं कि बस अब आपको मारकर हम लोग ये जमीन अपने हथियार लेंगे, और वो हंस रहे हैं कि तुम जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो इस जमीन के टुकड़े को लेकर, तुमसे पहले भी बहुत लोग आए जो इस पृथ्वी पर अर्थात मुझ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, उन्होंने भी कईयों का खून किया, खून बहाया, खुद भी मरे, कुछ समय तक एग्जिस्ट किए और वो भी चले गए, अब तुम आए हो, तुम भी वही काम कर रहे हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो, किस लिए, कि आपको वो जमीन का टुकड़ा चाहिए। कहते और आगे भी आएंगे, हमारे बारे में बोल रहे हैं, है ना, 50 मीटर का, 30 मीटर का, 100 मीटर का मकान, है ना, उन पर हमारी भी फोटो लगेगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज के चक्कर में हम भी झगड़ेंगे, है कि नहीं, और एक दिन हम भी चले जाएंगे, लेकिन ये धरती कहाँ रहेगी, ये यहीं रहेगी, तो उसका हंसना वाजिब है कि नहीं, बिल्कुल सही हंस रही है हमारे ऊपर, तो अगर हम पेपर देख के बात करते हैं, कानून के पास भी जाते हैं, जिसने कब्जा कर लिया असली पेपर मेरे पास है, वो कहता नहीं असली मेरे पास है, झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में गए, फिर देखते हैं कोर्ट वाले मकान बेचते हैं, सारे लोगों की लिस्ट होती है, ऐसे होता है जिसमें पहले किसने किसको बेचा, मेन अलॉटी कौन था, फिर उसके बाद किसने किसको कैसे कैसे दिया। लेकिन ये पेपर भी गलत बने हैं, असली पेपर तो भगवत गीता है, जहाँ भगवान कह रहे हैं सर्व लोको महेश्वर, सारे लोगों का ईश्वर कौन है, स्वामी कौन है, मैं हूं। तो भगवान इन सारी धरती का जो पृथ्वी है ये भी भगवान की क्या है, धरा धांगनी है। तो ये भगवान की नेचर है, भगवान कहते हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और रजिस्ट्री दिखा रहे हैं भगवान, रजिस्ट्री क्या दिखाई, सर्व लोकों महेश्वर, मैं सभी लोगों का महेश्वर। ठीक है, तो हमारे तो सारे दावे खारिज हो गए, फिर तो एक फिल्म भी आ रही थी कहते हैं ओ माय गॉड, है ना, तो उसमें भी ऐसे बोलता है कि किसने देखा है, किसने क्या किया, यहाँ तो गीता से पढ़ाते हैं फिर उसको देख भगवान ने क्या बोला है, ऐसा कुछ होता है उसमें, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है ना। तो भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर भी मैं ही हूं, प्रोप्राइटर भी मैं ही हूं, और इंजॉयर भी मैं ही हूं। लेकिन हम जैसी जीवात्माएं जब चाहती हैं कि भगवान बने, भगवान की तरह मान सम्मान मिले, तो जब इस संसार में भेजा जाता है तो भगवान प्रॉपर्टी के पेपर भी देते हैं, भैया मेरा ध्यान रखना कि मैं ही हूं सब कुछ। लेकिन जीवात्मा इस चीज को भूलकर क्या करता है, वो बोलता है नहीं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। जीवात्मा क्या बोलता है, ईश्वरो हम, भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं ईश्वर हूं, और जीवात्मा क्या बोलता है, ईश्वरो हम, भगवान कौन है, मैं हूं। मैं का मतलब कि मैं एंजॉय करूंगा, अहम भोगी, मैं जो तपस्याएं करता हूं, मैं जो कर्म करता हूं, ये जो प्रॉपर्टी मेरे पास है उसका भोग कौन करेगा, मैं करूंगा। ईश्वर हम अहम भोगी, सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं, मैं आई एम द परफेक्ट, मेरे अंदर कोई गलती नहीं, बलवान सुखी, और मैं बलशाली हूं, और इस सब का पूरा भोग करके मैं सुखी रहूं। ये मेंटालिटी किसकी रहती है, जो लोग भगवान से विद्रोह कर कर संसार में आए हैं वो इस प्रकार अपने आप को भगवान समझना चाहते हैं, एकदम उल्टा। और इस प्रकार भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को असुर कहा गया है, वो लोग जो अपने आप को अपने पास सब कुछ रखना चाहते हैं, जो इंजॉयर बनना चाहते हैं, जो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और जो अपने आप को प्रोप्राइटर समझते हैं। दूसरे लोग जो ऐसा अपने को नहीं मानते, जबकि अपने आप को एक सहायक मानते हैं, सबऑर्डिनेट, भगवान का दास के रूप में अपनी पहचान करते हैं, और भगवान की इस क्रिएशन में भगवान की इंद्रियों को सुख देने में मदद करते हैं, ये लोग भी वही लोग हैं जो विद्रोह कर कर आए, लेकिन अब अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर रहे हैं इन्हीं शास्त्रों के आधार, और फिर अपने उस दासत्व को समझ कर पहचान कर भगवान की सेवा में सहयोग कर। तो जो लोग इस संसार में हैं और असुरों के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक हम जो बात कर रहे हैं जिसमें अमान मतलब मान, मान की इच्छा रखना, तो मान की इच्छा रखना ये एक तो भौतिक संसार के परिवेश से देखें, हर व्यक्ति इस संसार में उसी मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, और हर व्यक्ति अगर करेगा तो क्या होगा, आपस में झगड़ा भी होगा, कंपटीशन रहेगा, शॉर्ट कटिंग कंपटीशन, दूसरे का जब दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा तभी तो उसको मान मिलेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा तभी तो उसको मान मिलेगा। मान की इच्छा इस प्रकार बनती है। दूसरा, क्योंकि मेंटालिटी मानसिकता भोग की रहती है तो हर कर्म के पीछे, हर क्रिया के पीछे जो फल की इच्छा रहती है और उस फल का भी उद्देश्य क्या रहता है कि यस इस फल की वजह से जब मुझे ये लाभ मिलेगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे और मुझे इसके आधार पर मुझे मान देंगे। तो मान की इच्छा अपने आप में क्या बन जाती है, एक बहुत बड़ा अनर्थ बन जाता है। तो इस संसार में भी जो मान की इच्छा कर भौतिक समाज में भी जो रह रहा है तो हम देखते हैं वो भी बड़ा सुखी नहीं रह पाता। भाई घर में अगर हर व्यक्ति को मान चाहिए तो कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको खुद को मान चाहिए तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, निकृष्ट मानना पड़ेगा ना, दूसरे के सामने अपनी ऐसी क्वालिटीज दिखानी पड़ेंगी, ऐसी बातचीत करनी पड़ेगी, अपने को नंबर वन दिखाना पड़ेगा तभी तो वो मान देगा आपको। लेकिन एक कंडीशन सोल दूसरे का मान कर कैसे सकती है, इसलिए हम देखते हैं बड़े से बड़े कंपनी का मालिक भी इतनी रेस्पेक्ट नहीं कमा पाता, इसलिए उसको अपने पास किराए के लोग रखने पड़ते हैं जो उसको क्या दें, मान दें, सम्मान दें। वरना क्योंकि हर व्यक्ति को मान चाहिए, एक रिक्शे वाले का भी अपना मान सम्मान है, वो कहेगा मैं तुम्हारे अंदर स्पेशल ऐसा क्या, मैं झुकूं तुम्हारे, ठीक है तुम राजा हो, अब अपने देश के राजा हो, मालिक हो, अपनी फैक्ट्री के मालिक हो, बट मैं भी मान लू कि लेकिन अपने रिक्शे का मालिक हूं, उसका भी अपना सम्मान मान चाहिए। तो इसलिए संसार में व्यक्ति कुंठित रहता है, क्योंकि वो जब देखता है कि उसको उसके हिसाब से जो चीज चाह रहा था नहीं मिला तो परेशान रहता है। फिर जब हम लोग डिवोशनल एरिया में आते हैं इस वातावरण में, तो इस वातावरण में भी भौतिक इच्छाएं तो रहती हैं, धीरे धीरे खत्म होती हैं, एकदम तो खत्म नहीं होती हैं। तो क्या होता है फिर, यहां पर भी व्यक्ति को क्या इच्छा रहती है मन में हर चीज के पीछे, कि मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। और किस तरह होता है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति ने कुछ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो चाहता है कि इसका प्रदर्शन भी हो, लोग इसको देखें भी, लोग देखेंगे, जब उन्हें पता चलेगा ये किसने किया तो मेरी आइडेंटिफिक, मेरी पहचान उससे होगी कि मैंने ये किया, इस व्यक्ति ने काम। जैसे एक शुद्ध भक्त की मेंटालिटी एकदम अलग होती है, वो क्या करते हैं, जैसे माधवेंद्र पुरी का हमने एग्जांपल लिया था कि जब भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई और पुजारी के सपने में आके बोला कि जाकर तुम उनको वापिस देकर आओ, ये मैंने उनके लिए चुराई है और बाजार में मिलेंगे आपको, माधवेंद्र पुरी उनका नाम होगा। तो जब वो पहुंचे वहां पर और चिल्लाए कि कौन है माधवेंद्र पुरी, तो उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। कहते अरे तुम्हारे लिए भगवान गोपीनाथ ने क्या किया, ये खीर का कसोला चुराया था। तो उनको लगा कि अब लोग क्या करेंगे, मेरा मान करेंगे, मुझे बहुत बड़ा भक्त मानेंगे। तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया, खीर ली और चले गए अपने काम में चंदन लेने के लिए, तुरंत स्थान को छोड़ दिया। इसलिए बोला भक्ति ने, बताते हैं कोट करके, कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा इसकी तुलना की गई है सूकर विष्ठा। भक्त के लिए इस प्रकार का मान, क्योंकि उसको मालूम है कि इस संसार में मान सम्मान या इस प्रकार की मेंटालिटी रखना वो एक किस्म से क्या है, एक सुअर की जो विष्ठा बोलते हैं, मल बोलते हैं, उसके समान है। इसलिए भक्त लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज का क्रेडिट लेना नहीं चाहते। वो तुरंत अगर उनको उन्होंने कुछ किया भी, अगर उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया, सेवा अच्छी की, तो वो उसका क्रेडिट किसको देते हैं? गुरु को देते हैं या वो भगवान को अर्पित करते हैं। क्योंकि एक भक्त जब इस प्रकार के रियलाइजेशन में होता है तो वो हर चीज के पीछे कारण देखता है। उसने कोई भी सेवा की, अगर उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है तो वो रीजन बताता है कि जो मैंने ये काम किया, या आपको लग रहा है कि मैंने किया, एक्चुअली ये मैंने नहीं किया, ये तो उस समय पर ये व्यक्ति ये सही समय पर ले आए थे और तब मैंने ये यहां पर पकड़ाया, तो अल्टीमेटली इन्होंने किया। तो चाहता है कि दूसरों को मान दी जिन्होंने किया, जिन्होंने मदद की, ठीक है। लेकिन हमारी मेंटालिटी रहती है कि नहीं, चाहे उसने किया चाहे किसी ने भी किया, अल्टीमेटली नाम किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि लोग मेरी पहचान करेंगे इससे। लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये काम मैंने किया? और जब पता नहीं चलेगा तो फिर फायदा क्या हुआ यहां पर इतना टाइम देने का? तो इस प्रकार की मानसिकता से, इसको बोलते हैं एक किस्म की डिजीज, जिसे बोलते हैं एक किस्म की बीमारी है, जो पीछा नहीं छोड़ते बिल्कुल। और जो व्यक्ति को मान चाहिए तो फिर वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। क्या वो दूसरों को मान नहीं दे पाएगा? जिसको खुद को चाहिए वो दूसरे को क्यों देगा? दूसरे को नीचा दिखाकर या दूसरे को हटाकर तभी तो उसको मान मिलेगा। हर एक से अपने को श्रेष्ठ मानेगा तभी तो मान मिलेगा। इसलिए कई बार हम लोग अपने आपस की डीलिंग में भी क्या करते हैं, हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की तारीफ कर दे कि प्रभु जी कमाल कर दिया आपने, आपने तो बहुत सुंदर सेवा करी, तो अब जिस व्यक्ति को खुद को क्रेडिट लेना था वो क्या बोलेगा? ये मेरे भक्त विषय में आता है, ये मेरे आदमी है, और इसको एक्चुअली मैंने ही बताया कि तू ऐसा करियो फिर ऐसा करियो। क्यों? कारण क्या है इसका? मान चाहिए। सर्व कारण कारण कौन है? मैं हूं, समझ रहे हैं? वो ये जताना चाहेगा कि इसने जो अच्छा किया भी है किसकी वजह से किया है। अगर मैं इसको नहीं बताता कि ऐसा कर फिर ऐसा कर तो कैसे होता? तो इस मान को जो है हमें त्यागना पड़ेगा। जब हमें कोई मान मिलता है तो या तो उसे गुरु को समर्पित करें, या फिर उसका जो रीजन है या जिस व्यक्ति ने उसमें मदद की है उसको ग्लोरीफाई करें। इससे क्या होगा कि हम लोग उस पर्टिकुलर ग्लोरीफिकेशन का जो कॉज है हम दिखा रहे कि ये भक्त है, इसकी वजह से ये हुआ। और फिर जब हमें मान मिलता है तो हम लोग इसको समर्पित करते हैं गुरु को, या इसका जो कारण है भगवान, उनको बताते हैं कि ये अल्टीमेटली कारण है, हमें तो ये ग्लोरिफिकेशन, ये जो मान है इनको समर्पित करना चाहिए। तो सभी कारणों का कारण देख पाते हैं। सभी कारणों के कारण इसलिए किसे बताया? भगवान कृष्ण। तो भक्तों के जीवन में रहें चाहे बाहर के जीवन में रहें, ये मान की जो भावना है इसका त्याग होना ही चाहिए। और दूसरा, दूसरों को सदैव मान देने वाला बनना प्रयास। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को ग्लोरीफाई करता है हर चीज में, किसी के अंदर छोटा सा भी गुण देखकर वो दूसरों को अगर अप्रिशिएट करता है, दूसरों को मान करता है, सम्मान देता है, तो उसके फायदे देखें क्या है? एक, उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होगा। हम लोग दुश्मन कैसे बना लेते हैं? जब हर चीज बोलते हैं कि नहीं मैंने किया ये, तो मैं ही था इसका। लेकिन अगर भक्त या व्यक्ति दूसरों के सद्गुणों को देखकर उन्हीं को ग्लोरीफाई करेगा, कमाल ला जी आपके अंदर से बहुत अच्छा गुण है, आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, अल्टीमेटली आपने ये किया, दूसरों को मान देता है, तो किसी जो मान हमें चाहिए, हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता जब हमारी तारीफ होती है? नेचुरली सबको अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इच्छा रहती है कि ये चीज़ पता चले और मुझे ग्लोरिफिकेशन मिले। तो जब हमें किसी के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है या हमें कुछ अच्छा बोला जाता है तो अच्छा लगता है। तो अब सोचिए, जैसा अच्छा हमें लग रहा है, अगर वही शब्द हम लोग दूसरे की ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति, आप खुद प्रयास थोड़ा सा चिंतन करके देखिएगा कि कभी कोई व्यक्ति अगर आपके पास आए और आपके कुछ गुणों का व्याख्यान करे, है ना, कि भाई कमाल है वैसे आप, क्या कीर्तन करते हैं, अरे आपका जो कीर्तन है ना, शुरू में तो हो सकता है दिखाने के लिए भी हम बोले नहीं नहीं मैं कहाँ करता हूँ, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, बट लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है शब्द इस तरह के। प्रभु जी आपने जो इस बार कलेक्शन करी ना प्रभु जी कमाल, आप कैसे कर लेते हैं, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसको मालूम है कि ये सारे कार्य मैं जो कर रहा हूँ, अगर इसका मैं खुद लूंगा मान, इसका जो फल है खुद भोगने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा नुकसान करेगा, तो इसलिए उसको गुरु को आप समर्पित करें। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद जी, हैं उनको बोला गया कि चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं भगवान थे, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार पूरे देश में घूमकर किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, स्वयं भगवान कर रहे थे। फिर रूप गोस्वामी जी आए, सनातन गोस्वामी जी आए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद जी भी थे, जिनको महाप्रभु ने कहा प्रति घरे घरे गया मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। तो उनको भी उस तरह का, उन्होंने तो नामहट बाजार भी बोला था। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी इतने ग्रंथ लिखे, वृंदावन की जो है सारी लीला स्थलियों को ढूंढा, और आचार्य भी आए, लेकिन एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी आए, उन्होंने भी 64 गौड़िया मठों की स्थापना करी, लेकिन जब प्रभुपाद जी विदेश गए और जब उनको मिली सफलता, और ऐसी सफलता कि पूरे विश्व भर में हरि नाम होने लगा, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, लोगों ने दीक्षा लेने शुरू कर दी, मल्लेच्छ और यवनों ने जो है वैष्णव धर्म को अपना लिया, तो रिपोर्टर्स ने, लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद जी भगवान भी आए थे स्वयं, इतने सारे आचार्य आए, लेकिन ये काम आपने कर दिया, ऐसा कैसे? तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, एक कहते वो सब कुछ कर सकते थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसका क्रेडिट मेरे लिए छोड़ दिया कि ये करेगा, एक बात। फिर दूसरा बात, लोगों ने जब कहा प्रभुपाद आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया, आप तो बस, प्रभुपाद ने कहा नहीं, आज मैंने जो भी किया है वो सब का सारी चीजों का श्रेय जो है वो जाता है मेरे गुरु महाराज को, भक्ति सिद्धांत सत्य महाराज को, उनकी आज्ञा से, उनकी प्रेरणा से, उनकी ही शक्ति से मैं इस कार्य को कर पाया। जबकि इन आचार्यों में, इनके आचार्यों के चरणों की रज के अंदर इतनी शक्ति है कि ये पूरे विश्व भर में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मेरे को क्रेडिट दिया और वही क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए जिस शिप में गए उसमें 2 हार्ट अटैक भी आए, 70 वर्ष की उम्र थी, उसी में एक प्रार्थना लिखते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, कौन मिलेगा, लेफ्ट मुड़ना है राइट मुड़ना है, रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए देश में जहां पर कोई संस्कार नहीं है, जिन्होंने कभी भगवान नाम नहीं सुना, ऐसी अवस्था में मुझे आपने यहां भेज दिया, कहां ला डाला है? तो इसलिए मैं मानता हूं कि आपने मुझे यहां भेजा तो अब आप जैसा नचाना चाहते हैं मुझे वैसा नचाइए। इसलिए जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने जैसा नचाना था नचाया, भगवान ने जैसा काम उनसे करवाना था करवाया, तो जब उसका क्रेडिट भी मिला, जब उसके लिए मान सम्मान भी मिल रहा था, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उसका कारण अपने गुरु को बताया और भगवान को बताया। नहीं लिया करते। और जब देखा जाता है कि जब उनको मालाएं पहनानी पहनाई जाती हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, जब बड़े बड़े आसन उनको दिए जाते थे, तो बोलते थे कि एक, क्योंकि उनको तो सिखाना है सबको कि गुरु का सम्मान इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं लेते थे उसको, पूरा का पूरा ट्रांसफर करते थे गुरु परंपरा की। तो एक भक्त की मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी करे और जब उसको उस चीज का मान मिले या उस चीज के लिए ग्लोरिफिकेशन मिले, उसे अपने गुरु को समर्पित करना चाहिए, अपने अथॉरिटीज को समर्पित करना चाहिए, या बताना चाहिए कि नहीं, मुझे जो ये आप बात कर रहे हैं ये, इसका कारण ये भी है, ये भी है और ये भक्ति है। तो इस प्रकार हम लोग उस मान वाली कंडीशनिंग से हट पाएंगे। इसीलिए इसकी अगर हम जरूरत समझें कैसे, कि जब हम लोग कोई सेवा भी करते हैं तो उसके पीछे भी जो हमारा मानसिकता रहती है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ तो इस सेवा को करने से मुझे ये मिलने वाला है, ये वही मेंटालिटी है जिस प्रकार भौतिक जगत में हम कोई बिजनेस खोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम फल सोच लेते हैं, ये मिलेगा तभी मैं करूँगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा तभी मैं करूँगा। तो जब आध्यात्मिक एटमोसफेयर में आते हैं तो यहाँ पर भी ये सेवा करूँगा तो इससे ये मिलने वाला है, इतना करूँगा तो इससे ये आने वाला है। तो हमारी की पूरी सेवा जो है उस मान के भावना से, जो स्वसुख भावना, उससे जो सुख मिलने वाला है उससे जो है कंटेमिनेटेड हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, दूषित हो जाती है। इसलिए उसको प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं कहते। इसलिए भक्ति को भी बताया जाता है कि तामसिक रूप में परफॉर्म किया जाता है, राजसिक रूप में और सात्विक रूप में। कर भक्ति रहे लेकिन उस तक आपकी मनस्थिति क्या है, अगर भगवान की और गुरु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है तो ये शुद्ध भक्ति का अंग है, विशुद्ध भक्ति। और अगर केवल सुख और शांति में रहने के लिए हो रहा है कि मुझे अच्छा लगता है तो ये सात्विक किस्म की है। अगर मान सम्मान पाने के लिए हो रहा है तो ये राजसिक भक्ति है। और अगर भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अपराध हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं तो ये तामसिक वृत्ति की बोली जाती है। भक्ति ही माला भी कर रहे हैं व्यक्ति, साधना भी हो रही है, दर्शन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वर्षिप भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन मानसिकता क्या है। इसलिए कपिल देव मुनि जो है देहूती माता को बोलते हैं कि अगर हम लोग पूजा कर रहे हैं या कोई भी डिवोशन सर्विस कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे अगर भाव ठीक नहीं है, एक या दूसरों के अंदर जिन लोगों से हम संपर्क करते हैं जो और भक्त हैं उनके साथ हम उनके हृदय में परमात्मा को नहीं देख रहे हैं डीलिंग करते हुए, तो फिर क्या होगा, हमारी जितनी भी ऑब्लेशंस हैं या आहुतियां हैं या जो भी हम सर्विस कर रहे हैं वो समझ लीजिए इस प्रकार है जैसे कि आप आहुति डाल रहे हैं यज्ञ में लेकिन आग बुझी हुई है और राख है वहां पर, तो आप जो भी डालेंगे तो वो क्या हो गया, राख ही हो गया, उसको कोई यूज नहीं। एफर्ट्स भी पूरे लगा रहे हैं, टाइम भी पूरा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट भी ठीक कर रहे हैं, टाइम हमारे पास भी उतना है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे क्लासरूम में एक टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स बैठे हैं लेकिन हर व्यक्ति की मेंटालिटी, हर व्यक्ति की एफर्ट्स, समझने की शक्ति अलग अलग है। और वो पता चलता है कब, जब उनके मार्क्स आते हैं, है ना, मार्कशीट आती है तो पता चलता है इसके 98%, इसके 100%, इसके 90%, 60%, इसके 40%। और कुछ भी पता, हम कुछ भी जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस कल्चर में, क्योंकि भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा रोल है हृदय का, जैसे क्योंकि भगवान को बोले भाव ग्राही बोला गया, तो हृदय का सबसे बड़ा रोल है जिसके हृदय में क्या चल रहा है, और जिसके हृदय में सब कुछ ठीक होगा तो उसके बाहरी लक्षण भी ठीक होंगे 100%। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, वो किसी का अपमान नहीं करेगा, वो उसकी मान की इच्छा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं या समय ज्यादा हो जाता है तो जो कल्चर तैयार होता है वो सीनियर उसको देखकर ही होता है। आज आप बात करो कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे बच्चे ये करते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं, तो उनका आधार क्या है बच्चों का बिगड़ने का? एक कि परिवार के लोगों को देखते हैं कि पैसा नहीं आया तो गुस्सा हुए, तो देखते हैं ठीक है पैसा नहीं आया तो गुस्सा होना चाहिए, किसी ने कोई काम नहीं किया तो गाली दे दी, अच्छा मेरा काम नहीं होगा तो मुझे भी गाली देनी। कहां से सीख रहे हैं? कौन है उसके आचार्य गलत सिखाने के? घर वाले, है ना? और फिर कुछ बाहर का समाज, सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सारे ही मैथुन जीवन में लगे हुए हैं, सारे ही ऐसा फोन रखते हैं, सारे ही ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उसको भी लगता है कि सबको मेरे को भी ऐसा होना चाहिए। उसी तरह जब हम लोग इस आध्यात्मिक वातावरण में आते हैं और ठीक प्रकार से भक्ति को अनुशीलन नहीं करते तो, और कई प्रचारक भी होते हैं और कई लोग आपको देखते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी समय से मंदिर जा रहे हैं, क्या देख पाते हैं? वो ये देखते हैं कि ओके जब इस व्यक्ति ने ये काम किया तो इसका क्या प्रभाव था उसके ऊपर। एक एक चीज ऑब्जर्व की जाती है, जब इसको मान मिला, सम्मान मिला, तो कितना इस पे प्रभाव रहा। जब इसको एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां पर उसको उद्विग्न किया गया, उस पर क्रोध किया जा रहा है, उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, तो हमारे इन सीनियर्स का या इन गुरुजी का क्या प्रभाव रहा। और ये जो सेवा की जा रही है तो ये कितना सेल्फलेसली कर रहे हैं या कितने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से छलकती हैं हमारी परफॉर्मेंस, और फिर वही चीज जो है नीचे ट्रैवल करती है। इसलिए लीडर्स का या सीनियर डिवोटीज का ये सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है। वो अब हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं प्रभु जी हमारे बच्चे बड़े गलत हैं, कोई अगर शिकायत लगाते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी इन बच्चों ने ऐसा कर दिया, ये बच्चे हमारे बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, मानते नहीं, चार चार घंटे टीवी के आगे बैठे हुए। तो अगर आप उसकी और थोड़ा डिटेल में जाओगे कि आपके दिनचर्या क्या है, तो हम तो बस 2 घंटे देखते हैं, आप 2 घंटे देखते हो, बच्चा 4 में देखेगा? नहीं, बड़ी कार्टून देखता है। अरे तो उसको सास भी बहू से लेना क्या है, वो कार्टून ही तो देखेगा, उसकी उम्र कार्टून की। तो फिर जब इस प्रकार बोला जाता है कि ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है, इसका कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं हम ठीक नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 4 चीजों पर जब बल दिया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुनना, उसमें 2 चीजें जो है अमानी, अपने मान की इच्छा नहीं करना, सदैव दूसरों को ग्लोरीफाई करना, दूसरे को क्रेडिट देना, मान मिले तो उसे आगे ट्रांसफर कर, तो ये पता चलता है। तो जब ऐसा करेंगे, अमानित्व हो जाएंगे, तो हम लोग हर चीज में, जिसे ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, जो इतना व्यक्ति ऐसे स्तर पर रहेगा कि उसे फिर उसकी सेवाएं जो हैं या उसकी हर एक्टिविटी जो हैं उसे सेल्फलेस और स्वसुख भावना से, अपने एंजॉयमेंट से नहीं, वो केवल भगवान के सुख को देखेगा, गुरु के सुख को देखेगा, दैट्स उसे नहीं चाहिए मान। तो इस प्रकार की मन सकता। तो हम लोग पिछली बार की तरह जिसमें एक्सरसाइज की थी, अपने परिवेश में हम लोग इसको ढाले अगर तो अपने शब्दों में तीन तीन पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए आप। क्या कारण है कि हमें वो किन कारणों की वजह से हम लोग जो है सदैव मान की इच्छा बनाए रखते हैं, हमारे भक्तिमय जीवन में अगर हम लोग इस मानसिकता को बरकरार रखते हैं, मान की इच्छा को बरकरार रखते हैं, तो उससे होने वाले नुकसान क्या हैं। तीसरा, अपने शब्दों में कि हम लोग अगर अमानित्व हो जाएं, अगर हम लोग अमानित्व होने का प्रयास करें तो उसके क्या लाभ हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अमानित्व होने के लिए हमें क्या चीज़ों का अपनाना चाहिए, जैसे कि हम लोग तो तीन तीन पॉइंट लिख लीजिए, हो सकता है कईयों के आपस में मिल जाएं, लेकिन जो अलग हों वो बता सकते हैं, प्रयास कीजिए लिखने का। पांच मिनट में जल्दी जल्दी से अभी लिखना है, घर से लिखकर नहीं आना। जो लोग कॉपी पेन नहीं लाए वैसे सोच सकते, बोलने के लिए हाथ खड़ा कर सकते। तीन तीन पॉइंट कुछ भी सोच कर इकट्ठे हो गया सबका ठीक है। तो हाथ खड़ा करें और पहले बताएं पहले पीछे से हाथ खड़ा हो रहा है कुछ। हाँ जी पहला क्या था क्वेश्चन मालूम आपको कि क्या कारण है कि हम मान की इच्छा करते हैं, वो क्या कारण है, तो कोई एक कारण बताइए। जो हमने बात शुरू की थी भोक्ता राम यज्ञ तपसा, कि भगवान बोलते हैं भाई मैं भोक्ता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं प्रोपराइटर हूँ, और दूसरी तरफ असुरों के गुण बताए थे ईश्वर हम अहम भोगी, तो इसका मतलब क्या बनना चाहते हैं, स्वामी ईश्वरत्व की भावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा मेरा भाव मुझे मान सम्मान मिलेगा तो पूरे समाज में क्या होगा, मेरी बात मानी जाएगी, मेरा दबदबा रहे, ठीक है ना, तो ये कारण। ठीक है, और भाई दूसरा नीचा रहेगा तभी तो अपना मान होगा ना, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं वो हमेशा रहेगा अपने अंदर कि मुझे मान सम्मान। कारण क्या रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि मैं मेरी असली हैसियत क्या है, मैं क्या हूं, मैं भगवान का दास हूं, आत्मा हूं एक, और अज्ञानतावश मैं अपने को शरीर मानता हूं और इसी वजह से मुझे शरीर का मान भी है, उसी शरीर के लिए मान की इच्छा कर रहा हूं, अज्ञान ये सब। रजोगुण की वृद्धि से भी इस प्रकार के अनर्थ हमारे अंदर जागृत होते हैं। क्या पाने की, हाँ ये तो होती है, हम कारण पूछ रहे हैं क्यों होती है। हाँ, क्योंकि हमारा शुरू से मान सम्मान पाने की इच्छा रही है संसार में, तो आध्यात्मिक जगत में भी आते हैं तो वही मेंटालिटी रहती है, हम कारण की तरफ जाए। हाँ, कि ज्यादा समय हमारा ऐसे लोगों के बीच में है उठना बैठना जहां हर जगह हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा करता है, और ये भी देखते हैं कि सभी लोग ऐसे लोगों की जय जय करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज हमारे अंदर भी घर कर जाती है कि मैं कब इस पद पर पहुंचूंगा जब मुझे भी मान मिलेगा, जब मुझे भी सम्मान मिलेगा, या आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में जब किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा कार्य किया, अच्छी सेवा की, और उसको मंच पर बुलाकर तालियां बजती हैं और उस पर मंच पर बुलाकर उसको उसकी सेवा को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो लोग सही मेंटेलिटी से आगे ना बढ़ने के चक्कर में ना कारण क्या करते हैं, उससे कॉम्पिटिशन करते हैं कि अगली बार मेरा कब नंबर आएगा कि मैं अभी जैसे करूँ। वो बात ठीक है कि शुरुआत में हम इसको कंपटीशन का टाइप वो देते हैं, लेकिन सही कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ये है कि उस समय उसको देख के प्रसन्न होना जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और अपनी सेवाओं को भी दृढ़ता से विश्वास भाव से करना। और उससे तो हम नीचे आए उसकी वजह से, और बात ठीक है कि हमने जो बात इससे पहले बोली कि जब समाज में लोगों को देखते हैं कि ये मान मिलने से इसका नाम हो रहा है, इसको ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, तो हमारे अंदर भी जागृति होती है। और वास्तव में अगर बोले तो इनबिल्ट क्वालिटी तो भगवान के अंदर है ही, और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो इसलिए हर चीज हमारे अंदर भी अंश मात्रा में है, लेकिन एक श्रीमती राधा रानी का मान है जिसको कि सीखने के लिए भगवान ट्यूशन लेते हैं राधा रानी से कि मुझे भी सिखाओ कि तुम कैसे मान करती हो, है ना, क्योंकि जब तुम मान में आ जाती हो तो मेरे को बड़ा मुश्किल होता है आपको मनाना, है ना, तो एक वो मान है आध्यात्मिक मान जो ललिता जी सिखाती है श्रीमती राधा रानी को, और एक हमारा मान है जो हमको जो है भक्ति से और नीचे गिरा देता है, ठीक है, तो उस तरह की मेंटालिटी जो है हमारी हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा क्या प्रसंग था कि क्या नुकसान है अगर हम इस प्रकार की मान की मानसिकता सदैव बरकरार रखें डिवोशनल एटमॉस्फेयर में भी आके। शुरुआत के दिनों में हो सकता है हम कहें कि ठीक है न्यू फाइट कंडीशंस हैं तो अभी हम आ रहे हैं बढ़ रहे हैं आगे, तो बच्चे को बढ़ाने के लिए कई बार मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसको अच्छा अच्छा भी लगता है, लेकिन लंबे समय तक न्यू फाइट स्टेज पर रहना यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। अगर नहीं उठ पा रहे हैं या नहीं उठे हैं तो क्या नुकसान होते हैं हमारे, प्रगति रुक जाती है, क्योंकि हर सेवा आपकी मान की इच्छा से हो रही है, और अगर हम लोग हर चीज में मान सम्मान को तो भगवान की प्रसन्नता तो खत्म ही होगी ना, गोपियों का जो भाव है उनका भाव रहता है, उनकी हर चेष्टा और मन में जो विचार आता है वो केवल कृष्ण के सुख को देखती है। कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव गुरु यहाँ पर है, तो हम जैसे डिसाइपल्स की इच्छा होनी चाहिए कि हम किसके सुख को देखें, गुरु के सुख को देखें। तो जब हम गुरु के सुख और उनकी इंद्रियों को उनकी सेवा करना चाहेंगे तो हमारे अंदर से मान की भावना निकलेगी। मतलब मान की इच्छा रखने वाला कभी सेटिस्फाइड तो होगा नहीं, कहीं फुल स्टॉप लग जाए तो कभी दिन आएगा नहीं। गुड, और किसी के पास अलग पॉइंट है? कहते ना, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब बहुत न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत बहुत जन्मों तक श्रवण और कीर्तन भी करते रहे लेकिन इन अनर्थों का इलाज नहीं करवाया या इलाज नहीं किया तो क्या होगा, हमारे सारे एफर्ट भक्तिमय वाले भी श्रम कहलाएंगे, यूजलेस लेबर कहलाएंगे। क्योंकि भगवान के प्रति ना उत्पादे यदि रति, रति उत्पन्न नहीं हो रही भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। किन कारणों से? क्योंकि अभी इस प्रकार के अनर्थ, अपने को भगवान मानने की इच्छा है, अपने को सम्मान देने की, यहां तक कि ज्ञान का भी व्यक्ति के अंदर मान हो जाता है और वो अपने ज्ञान को फिर दूसरे के ज्ञान से तुलना कर कर भी अपना नुकसान करता है। इवन गुरु जब ज्ञान दे रहे होते हैं या लेक्चर प्रवचन कर रहे होते हैं तो उस समय भी व्यक्ति किस मानसिकता से सुनता है कि महाराज ने ये बोल दिया या गुरु जी ने ये बोल दिया, या यहाँ पर तो ये भी बोल सकते थे, मैंने वो पढ़ा था, ये एग्जाम्पल तो यहाँ बहुत अच्छा रहता है ना, और जो उनसे श्लोक बोल रहे थे वो पूरा नहीं बोला था उन्होंने, तो पूरा तो मुझे याद है। तो इस प्रकार वही ज्ञान फिर हम किसी और के आगे बखान करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ज्ञानवान हूं, ताकि लोग मुझे अप्रिशिएट करें। इस प्रकार हमारी हर चीज कंटामिनेटेड हो जाती है। बिल्कुल नहीं देगा, अगर दूसरों को मान देगा तो फिर अपने को कैसे मिलेगा। इसलिए महाप्रभु के चौथा जो वो है कि दूसरों को मान दो तो व्यक्ति दूसरों को मान कभी नहीं देगा, ठीक है ना। हो गया किसी का उसके अलावा कुछ? बिल्कुल सारी चीजें खराब हो गई इसकी। तो दास का स्वरूप है उसका वास्तविक जीव हृदय स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और मान की इच्छा वाला दास तो दास हो ही नहीं सकता ना, फिर वो तो बॉस हो गए। तो अपने अस्तित्व को कब पहचान नहीं पाए। हाँ जी, नहीं ले पर आए। अच्छा, इसका आखिरी जो है, क्या ऐसे उपाय करें कि जिससे हम लोग इस मान की भावना से शून्य हो जाए। अपने को निकृष्ट समझना, लेकिन बहुत जरूरी है, लेकिन क्या लगता है कि हमको आज सोच लिया कल भी सोच लेंगे? ये पोजीशन बहुत जरूरी है लेकिन ये सोचने से नहीं आएगी कि आज से मैं मान लेता हूं मैं सबसे निकृष्ट हूं। मानना तो यही है लेकिन इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाँ जी, जब प्रयास किया जाएगा और प्रयास किस फील्ड में कि जब हम लोग ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, अपनी वास्तविक स्थिति का बोध रहेगा तो व्यक्ति अपने को अपनी वास्तविक स्थिति पहचान पाएगा। कहाँ भगवान, जैसे ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड, जब भगवान का गुणगान किया जाता है तो भगवान के सारे गुणों का व्याख्यान किया जाता है। जैसे देवता लोग, उनके पास सारी शक्तियां हैं और भगवान के अंग के रूप में इस सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन जब इनके ऊपर असुरों का आक्रमण होता है तो इनका मान सम्मान सारा चूर हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, असुरों का मान बढ़ गया, जीत हार हो गई। नंबर तीन, जब भगवान प्रकट होते हैं उनकी रक्षा के लिए, जब भगवान प्रकट होते हैं, असुरों को तो वध करते हैं, लेकिन भगवान के प्रकट होने से देवताओं के अंदर ज्ञान आ जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवताओं को अपनी पोजीशन मालूम पड़ जाती है, क्या कि हम तो भगवान के दास हैं, और भगवान के प्रकट होने से क्योंकि ज्ञान में आ गए इसलिए वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान आप ही ने तो ये सारी सृष्टि रची है, आप ही के कारण जो है ये उत्पन्न होना, मेंटेन करना और डिसोल्यूशन, ये सब आप ही के तो कारण होता है, आप ही के तो कारण हमारा भी अस्तित्व है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति भगवान की उपस्थिति, भगवान को ग्लोरीफाई करता है तो अपनी स्थिति पहचान जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग नियमित रूप से भगवान के गुणों का गुणगान करें तो हम लोग अपनी वास्तविक स्थिति में को पहचान सकेंगे, और ऐसी स्थिति कि कहां भगवान और कहां मैं तुच्छ सा जीव, तो फिर मेरी मान की इच्छा रहेगी, क्योंकि मैं मान किसको दे रहा हूं, भगवान को दे रहा हूं। इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमने प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, सब कुछ पूरे विश्व को विजय करने के बाद भी क्रेडिट अपने गुरु को दिया और गुरु की आज्ञा से वहां गए थे, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को भी जब लोग बोलते महाराज आपने ये किया, महाराज आपने इतने मंदिर खड़े कर दिए, महाराज जी के सेंटेंस बोलते हैं क्या, सब प्रभुपाद जी की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभुपाद जी। तो आचार्यों से सीखना चाहिए और अपनी सेवाओं के बाद भी हमें उन सेवाओं के बाद जब प्रणाम करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसको ऑफर करना चाहिए गुरु को, ये प्रैक्टिस में लाना। कोई भी सेवा करी शुरू करते वक्त भी गुरु का स्मरण, सेवा करते हुए मध्य में भी हो तो बहुत अच्छा है, और सेवा के अंत में तो याद होना ही चाहिए कि मैंने जो भी किया, इसमें जो भी नुकसान हुआ या इसमें जो भी मैं ढंग से नहीं कर पाया या अच्छे ढंग से भी कर पाया, तो तुरंत उसे ऑफर करना चाहिए गुरु परंपरा। हो सकता है कि हमारी मेंटालिटी करते वक्त वो नहीं थी, हम यही सोच के कर रहे थे कि मेरे को पहचानेंगे लोग, मेरे को जानेंगे लोग, मैं ये आ जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, लेकिन सेवा को तुरंत खत्म करने के बाद भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी मानसिकता तो वही दूषित है, आपकी कृपा से मुझे सेवा मिली जिसको कि मैं ठीक प्रकार से कर भी नहीं पाया क्योंकि मेंटालिटी मेरी मान की ही थी, लेकिन आप क्या हैं, अपने भक्तों के दोषों को देखते नहीं, कृपया कर हमारे द्वारा मन से, वाणी से और शरीर से जो अपराध हुए उसे क्षमा करें, और इससे अगर हमने कुछ किया है तो उसको स्वीकार करें। तो इस प्रकार यहां से तुरंत उतार दें उसको, और जब कभी उसके लिए अप्रिसिएशन मिले तो और भक्तों को भी क्रेडिट दीजिए, और जब आपको मिले तो उसे भगवान को अर्पित कीजिए, गुरु परंपरा। अच्छी साधना और खुद के रेजोल्यूशन लेकर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हाँ मैं कोई भी सेवा करूंगा या कुछ भी करूंगी तो मैं प्रयास करूंगी कि इस प्रकार की जो कंडीशनिंग है मान वाली हर एक सेवा में मैं वो नहीं करूंगी। और प्रॉपर चैंटिंग, अच्छी साधना तो हर बीमारी की क्या है, दवाई है। अच्छी साधना का मतलब हरी नाम, अच्छे साफ सुथरे स्थान में भक्तों के संग तुलसी के आगे बैठ कर लेना सुनते हुए। अगर हमारी चैंटिंग के टाइम ही चल रही है सेवाओं की योजना और अच्छी सेवा की योजना की, ये करूंगा तो इससे ये फायदा होने वाला है। तो जब चैंटिंग के सामग्री आप जैसे मांग रहे हैं या मेंटेलिटी वो है तो होगा फिर भाई, क्योंकि हरि नाम तो चिंतामणि, वो तो दे देगा सब कुछ। तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जप कर रहे हैं तो जप करते समय हम केवल कृष्ण के नामों को सुने, इसके अलावा कोई दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा थॉट? माला करते करते अच्छा लगने लगेगा,
क्या हुआ,
माला करते करते अच्छा लगने लगेगा आपको भी, अच्छा क्यों लग रहा है? अच्छा कल मैं 3 घंटे बड़ी अच्छी चेतना में सेवा की है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हुआ क्योंकि हम वहां गए थे और वहां पर मैंने उनको देखा था, उन्होंने ये बनाया था खाने के लिए और बढ़िया प्रसाद था उसमें, ये चीज नमक थोड़ा कम था, बाकी वो चीज तो बहुत अच्छी थी। इसे पूछना भूल गया कि कैसे बनाया रहते, माला चल रही साथ साथ और सब डिवोशनली लग रहा था जब शुरू हुआ था, और कहां से कहां चले गए पता ही नहीं चला, और घूमकर जब आए तो 4-5 मन के भी नीचे हो गए थे। माला तो मेरी ऐसी होती है, प्रभु जी पूछो ही मत, बड़ी अच्छी चैंटिंग हो रही और कहां घूम रहे हैं मन के साथ घोड़े पर, पता ही नहीं कहां चल रहे हैं। तो चैंटिंग का मतलब हमें सेवाओं का भी आएगा, यार आज ये करना है, उसको ये बोलना था, अच्छा उसने कल मुझे ऐसा बोल दिया था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, सारी चीज चलती है चैंटिंग के टाइम। एक बड़ा सा कागज लगाना चाहिए सामने, आंखों के बिल्कुल ठीक सामने, कि चैंटिंग मीन्स हियरिंग, नो अदर एंगेजमेंट। मन कहेगा ना ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहां चलते हैं, बिल्कुल नहीं सुनने। चैंटिंग मतलब हियरिंग, हियरिंग मतलब क्वालिटी सुधारनी है। कि चैंटिंग का मतलब मैं एक एक शब्द को कानों में प्रवेश कराऊं सुनते हुए, और बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही कुछ और हुई है। बस में चलते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, हर जगह जप कर रहे हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जप वो 16 वाला जप नहीं होना चाहिए। 16 माला का जप तो बेस्ट है कि सुबह बैठकर भगवान के समक्ष या तुलसी के समक्ष या भक्तों के समक्ष बैठकर जप करना और सुनने का, बस सारा स्ट्रगल सुनने का, कि 1.5 घंटा 2 घंटा जो मैं जप में लगाता हूँ उसमें मैं और किसी को टाइम नहीं दूंगा, वो टाइम केवल चैंटिंग के लिए। ऐसी दृढ़ता के साथ जब जप किया जाता है तो वो हमारे को बहुत जल्दी पवित्र करता है। और जब मन में और चीजें रहती हैं तो फिर वही चीजें पूरी होंगी, पूरा दिन वही चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या करें इसको ठीक करने के लिए कि हमारे अंदर मान का स्वभाव खत्म हो? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपने जो सेवा करी तो अब उसको बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने ये की, ये मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ही सही टाइम पर लाया हूँ तो ये तो साफ ही लग रहा है ग्रॉस लेवल का है। तो लेकिन अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि मैंने किया, ताकि कोई पूछना चाहे या जिसके बारे में हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि किसी भी सेवा के पीछे भाव ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे इससे कुछ मिले या लोगों को पहचान पता चले मेरे इससे। सम मतलब समान रहें, ना उससे ज्यादा हर्षित हों अगर कुछ ने पता भी लग गया, और नहीं पता लगा तो दुखी भी ना हो। हाँ, मीनियल सर्विसेज। रूपा जी के भक्ति सिद्धार्थ स्वामी आप कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, एक्ट इन सच अ वे कृष्ण कम टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, सेवा इस भाव से और ऐसी सेवा करो कि भगवान स्वयं आए आपको देखने के लिए। क्या मतलब इसका? कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सबको दिखती हैं और कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो सबको नहीं दिखती, क्योंकि मान सम्मान का भाव कहीं ना कहीं अंदर रहता है। इसलिए हमें सेवा भी कौन सी चाहिए? आगे वाली, सबको सामने देखने वाली। और उन्हीं सेवाओं के लिए झगड़े भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं जिन सेवाओं पे दूसरों की नजर नहीं जाती, भगवान की तो जाती है, लेकिन भगवान से लेना देना क्या, हम भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो ऐसी सेवाएं भी हैं जिन सेवाओं को कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, उसमें इतना सम्मान नहीं है, ताली नहीं बजती ज्यादा। तो ऐसी सेवाओं को करना जो मीनियल कहलाती हैं, जो बिल्कुल निकृष्ट कहलाती है, कोई करना नहीं चाहता। स्वयं भगवान आदर्श पेश कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के कौन सी सेवा ली, जितने भी अतिथिगण आए उनके चरणों को धुला रहे। पंजाबी भाग में जब ये सेवा शुरू करी एक बार हमने, तो पहले तो अरे अरे कोई भी नहीं आ रहा, हाथ नाम कोई भी खड़ा कर रहा, लेकिन जब उस सेवा को ग्लोरीफाई किया गया बाद में, तो उसके लिए भी हम करेंगे सेवा, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बहुत अच्छी सेवा है, उसको ग्लोरीफाई भी किया। सेवाएं तो सारी अच्छी हैं, लेकिन करने वाले की मेंटालिटी पे डिपेंड है। हो सकता है कि सबसे निकृष्ट सेवा लेकर भी व्यक्ति को अहंकार हो जाए, देखा ये सेवा कोई नहीं ले रहा था, किसने ली, उससे ग्रस्त हो गया। और हो सकता है कोई सबसे फ्रंट वाली सेवा कर कर भी भगवान को प्रसन्न कर ले, क्यों, क्योंकि इस मेंटालिटी से कर रहा है कि भगवान मैं योग्य नहीं हूं, पर इतना महत्वपूर्ण दायित्व आपने दिया है, तो कृपा कर मेरी रक्षा करें, और सही चेतना में हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल हम उल्टे ही लेते हैं कि जिसने ठीक नहीं करी, तो कईयों को लगता है ये बड़ी वाली सेवा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिखने वाली सेवा है, मैं वो करूंगा जो दिखे ना। अब क्योंकि ना दिखने वाली सेवा ज्यादा ग्लोरीफाई हो गई, तो टर्न उधर चला गया, और जो बेचारा अच्छी वाली कर रहा है उसको लग रहा है यार मैं तो कर भी रहा हूं तो बेकार है, तो है ना, लोग तो यही बोलेंगे मैं मान सम्मान के लिए कर रहा हूं। नहीं, भाव ये रहना चाहिए कि इसे गुरु अथॉरिटी या भगवान कैसे प्रसन्न हो, बस चाहे कोई भी सेवा। हाँ, ये भाव बात अलग है कि ऐसी सेवाएं जिनको लोग शुरुआत के समय में नहीं करना चाहते, क्योंकि मानसिकता भी उतनी डेवलप नहीं है, तो उन सेवाओं को भी करने के लिए आगे आना जिन सेवाओं को कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, और कुछ लगता है आपको? हाँ, वैष्णव प्राप्त, बड़ी सारी चीजें ऐसी, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग अगर अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो व्यक्ति फिर इतना सजग हो जाएगा कि उसे वैष्णव प्राप्त भी बचेगा। मान सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सब चीजों को करने से महाप्रभु के की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि महाप्रभु स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए इन चार चीजों के लिए, तृणादपि सुनिचे ने तरोदपि सही सुनना, और अमान्य न मान दें, अपने मन की इच्छा न करें, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दूसरों को मान देना शुरू करें, दूसरों की सेवा को ग्लोरीफाई करें, दूसरे की छोटी छोटे गुण को भी जो है अप्रिशिएट करें, इस चीज की हमें आदत डालनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छे पॉइंट हमने डिस्कस किए, और कोई प्रश्न या किसी का कुछ वैसे हैं पूछ सकते। बड़ा अच्छा रियलाइजेशन है कि चैंटिंग को अच्छा करने के लिए माताजी ने प्रणाम करने शुरू कर दिए महाप्रभु को, क्योंकि मन तो कितनी बार भागता है, एक मन के में कई बार जाता है कई बार, और बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक है कि यस प्रणाम किया, बार बार प्रणाम करने से अच्छा है कि व्यक्ति कहे भी ध्यान ही लगा लूँ, कमर दर्द हो जाएगी, नहीं तो फिर अलग मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन अपने आप ही मन को लगा कि नहीं, बेटर है कि सुन लूँ, बाद में देख लेंगे। कई भक्त लोग मन के ही आगे नहीं करते, हरे कृष्ण कहीं घुमा हो रहे, तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ मन के पीछे आ जाते दोबारा, ठीक है ना। और कुछ लोग और भी तरीके अपनाते हैं, जैसे मैंने प्रणाम किया, कई लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का फिर से मंत्र बोलते हैं, इससे फिर आपका जो माला का टाइम है वो, क्योंकि माता जी के पास टाइम है तो माता जी जो है कर सकती हैं। कईयों को बोलो हमारे टाइम तो 16 भी पूरी नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है, अगर प्रणाम करने लग गए तो फिर झुके रह जाएंगे हम, है ना। तो समय काल परिस्थिति को देख कर आप कर सकते हैं, अपने अंदर कुछ ना नियम बना सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि हम लोग शुद्ध साफ एरिया में बैठकर तुलसी के सामने कुछ ना कुछ कोट्स लिखकर और आंखों को बंद कर, या खोलना भी पड़ेगा नींद आ रही तो, कोट्स पढ़ते हुए, और ध्यान कहाँ रखें, शब्दों पर, भगवान के शब्दों पर, जो हम लोग नाम बोल रहे हैं प्रॉपर सुने। हमने बताया ना, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी अगर हमें ग्लोरीफाई किया जा रहा है, सेवा के प्रति हमें, सेवा के लिए हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सेवा मैंने की इसमें कितने लोगों का सहयोग था, तो अल्टीमेटली उनका गुणगान होना चाहिए। मैं तो खाली लीडर के रूप में, या मैं थोड़ा बहुत मैंने भी कर दिया, लेकिन जो भी कर दिया मान लीजिए, उसके लिए भी अगर ग्लोरीफिकेशन मिल रहा है, या उसके लिए भी हमारा को मान सम्मान दिया जा रहा है, तो उसको हमें अर्पित करना चाहिए अपने सीनियर्स को, गुरु को। मानसिक रूप से प्रकट कीजिए। हाँ जी, स्वीकार मतलब कई भक्त तो बिल्कुल नहीं करते, कई बार ऐसी स्थिति होती तो चले जाते हैं, है ना, वो स्थान ही छोड़ जाते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल है। आखिरी कई बार हम आखिरी में बोलते हैं सभी, मतलब गुरु और गौरांग की जय जयकार हो, या उनको अर्पित करें, इसीलिए बोला जाता है ये, ताकि हम लोग अपनी सारी चीज़ों को अर्पित करें। लेकिन ये चीज़ें कई बार श्लोक बन के रह जाती हैं, जैसे महाप्रसाद है गोविंद, एक श्लोक बन के रह गए, जल्द जल्दी पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हुए नहीं है महाप्रसाद की, और तुरंत अटैक करते हैं, तो भाव नहीं रहता महाप्रसाद की प्रार्थना में भी कि मैं कृष्ण के द्वारा छोड़ा गया उच्चिष्ट, अपनी जो मेरी जीवा के लिए छोड़ा है, और जिस जीवा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से मुझे इस संसार में बार बार आना पड़ रहा है, तो ऐसा भाव तो जागृत नहीं होता जब प्रार्थना बोलते हैं। उस समय तो आइटम दिख रही होती है, नमक चेक कर रहे होते हैं, उस समय तो क्या क्या हो रहा है ये पूछो, तो ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए हर शब्दों के पीछे उसकी तहम, उसकी उसमें जाएं और हृदय से करें तो बहुत फायदा होगा। नमो ओम विष्णु पदाय बोलते हैं तो कहाँ स्मरण होता है प्रभुपाद जी का, पाश्चात्य देश तारे ने कहाँ दिखाई देता है, श्री कृष्ण चैतन्य में कहाँ पंचतत्व का दर्शन कृष्ण होता है। तो हर चीज़ के उसमें जाएंगे अगर भाव में, तो बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। प्रयास करो ना, उसका मीनिंग समझो, उसका चिंतन करो, नहीं तो फिर ये क्या बोलते हैं, जैसे लोहार का जो ढोंकनी होती है ना, बोला गया वैसे चल रहा है, फिर मुंह भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रमाण।